कंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमानो, जो आपके भक्त होते हैं जब उनको कोई कष्ट आता है तो क्या करते हैं, समझते हैं कृतम विपाकम, ये मैंने किए हुए कर्मों का फल है। मैंने पिछले जन्मों में कितने पाप किए होंगे और उनका ही फल मुझे मिल रहा है, भगवान को दोष नहीं ठहरा देना है। कई बार अभक्तों की बात तो दूर है, भक्त लोग भी ऐसा किया करते हैं कि मेरे जीवन में इतना भक्ति कर रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, मैं इतना भजन करता हूं पूजा पाठ करता हूं मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम में से कितने लोगों ने ऐसे सोचा है, प्राय सभी लोग सोचते हैं ना, कम से कम हमने तो सोचा, अभी आपने नहीं सोचा होगा तो हमें नहीं मालूम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसे सोचना चाहिए कि वास्तव में भगवान दोषी नहीं है, कर्म तो मैंने किए हैं भगवान ने नहीं किए, और मेरे किए वो कर्मों का फल अभी मिल रहा है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त को ये सोचना चाहिए कि वास्तव में मुझे और बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा है कि इतना ही मिला है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसका टांग टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, वो कहे मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, मैं तो जप करता हूं, एकादशी का व्रत का पालन करता हूं, सिनेमा नहीं जाता, टीवी भी नहीं देखा, 6 महीने तक टीवी नहीं देखे मैंने और फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे भाई साहब, आपने 6 महीने टीवी नहीं देखा, इतने महीनों से जाप किया, इसलिए तो केवल टांग टूट गई, नहीं तो शरीर चूर चूर होने वाला था, भस्म होने वाला था। ऐसे सोचना चाहिए भक्त को कि भगवान बड़े कृपालु हैं, थोड़े से ही छुटकारा करा देते हैं भक्त का, और सोचते हैं कि किस तरह से जल्दी इसके कर्मों को खत्म कर दें और उसको वापस भेज दें। वास्तव में भक्तों के कर्म क्षीण हो जाते हैं, जो भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं ना, वो कर्मों के फल नहीं होते, वो भगवान की कृपा होती है। क्योंकि हालांकि कर्मों के फल भले दीक्षा के समय चले गए हों, लेकिन कर्म करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई है, और जब तक ये प्रवृत्ति हृदय में है, यही प्रवृत्ति एक ऐसा तीव्र वेग बनकर, तूफान बनकर भक्त को प्रेरित करेगी पाप करने के लिए। इसलिए बीच बीच में भक्त भी पाप करते रहते हैं, और इस पाप से हमें रोकने के लिए, इस प्रवृत्ति का दमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हल्के से कभी कभी हमारा कान यूं करके कर देते हैं या हल्के से थप्पड़ मार देते हैं, तो हमें तो ये भयंकर लगता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के सरों के ऊपर जब नृत्य किया, तो एक साधारण बालक जब नृत्य करता है तो उसका वजन कितना होता है, कितना भार आ सकता है एक विशाल सांप के ऊपर अगर नृत्य करे तो। लेकिन कालिया को ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो इंद्रदेव वज्र से प्रहार कर रहे हैं, तूफान और जो बिजली धड़क रही है उनके सर के ऊपर एक के बाद एक, लेकिन भगवान बड़े कोमल तरह से नृत्य कर रहे हैं, मधुर नृत्य कर रहे हैं। तो ये है भगवान के प्रेम के थप्पड़ हमारे लिए। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जब हमारे जीवन में संकट आते हैं भक्ति करने के बावजूद, हमें समझना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि अभी हे मेरे प्रभु मेरे बेटे, अभी सुधरो, अभी देखो ऐसे काम मत करो, आज से टीवी देखना बंद करो, आज से जाप छोड़ना बंद करो, आज से 16 माला करते रहो रोज। तो भगवान बड़े प्रेम से हमको ले आते हैं उनके मार्ग में। अभी तुम केवल टीवी में रस लग रहा है, लेकिन मेरे भक्ति में कितना रस है तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए तुम मेरे रस पान करने के लिए नहीं इच्छुक हो, लेकिन मैं तो चाहता हूं तुम्हें रसपान कराने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भले तुम मुझे छोड़ने की इच्छा भी रखो बीच बीच में, लेकिन मैं तो तुम्हें कहां छोड़ूंगा, तुम मेरे पास आओ। इसलिए भगवान तो जबरदस्ती भक्त को अपने चरण कमलों में लेकर रख देते हैं। ये है भगवान की कृपा। इस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे, हृदवाग वपुर भीर विदधन नमस्ते, जो अपने हृदय से, अपने वाणी से, अपने वपु से भगवान को नमस्कार करते रहता है, जीवे तो यो मुक्ति प्रदेश दाय भाग, तो जीते जी वो मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है और भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी व्यक्ति बन सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जिस तरह से एक पुत्र को अपने पिता के जायदाद प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए। हाँ, आजकल जो हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर केवल वो जीवित रहे, पिता के संग में रहे, पिता की सेवा करे, तो पिता की जायदाद खुद ब खुद मिल जाएगी उसे। ठीक उसी तरह से जो भगवान की भक्ति कर रहा है, केवल अगर भक्ति में जीवित रहेगा वो, अर्थात भक्ति को छोड़ेगा नहीं, चार नियमों का पालन करेगा, जाप करते रहेगा, भक्तों के प्रति अपराध नहीं करेगा, सेवा करता रहेगा और ऐसे नियमों का पालन करता रहे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक न एक दिन निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाने का अधिकारी वो व्यक्ति बनेगा। भगवान के जो जायदाद है उनका धाम, उसका अधिकारी होगा। भगवान कहेंगे जैसे ध्रुव महाराज के साथ में कहा था कि हे ध्रुव, तुमने मेरा हृदय जीत लिया है, मुझे खरीद लिया है तुमने, तो मेरे पास क्या रहा तुम्हें देने के लिए, इसलिए मेरा धाम ही दे देता हूं, ले लो। और भगवान ध्रुव को अपना ही धाम दे दिया, विष्णु लोक दे दिया, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। तो भगवान की जायदाद हमें पूरी तरह से मिल जाती है, तो भगवान के जायदाद को छोड़कर हम इस संसार के छोटे छोटे चीजों के पीछे लगे हुए हैं, जब भगवान इतना कुछ हमें देना चाह रहे हैं, इतनी जायदाद कि सारे पृथ्वी से भी ज्यादा। इसलिए हमें केवल भक्ति करते रहना चाहिए, भक्ति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि जिस तरह से अगर हमें सूर्य में प्रवेश करना है तो इस शरीर से नहीं कर सकते, हमें भी अग्नि का शरीर चाहिए, अग्नि के शरीर को प्राप्त करेंगे तो सूर्य में प्रवेश कर पाएंगे। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शुद्ध हैं, अपाप विद्धिम, जैसे ईश उपनिषद में बताया गया है। तो अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचना है तो हमें भी उनकी तरह शुद्ध बनना पड़ेगा, अशुद्ध अवस्था में नहीं जा सकते। इसलिए जब हम अर्चा विग्रह की सेवा करने जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, आचमन करके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, मतलब स्वच्छ कपड़े पहनकर जाते हैं, तो इस तरह से ये नियम होते हैं भगवान के करीब पहुंचने के लिए। और जो हमें ये नियम बताए, जैसे शुद्धिकरण होता है और अंततः भगवान के धाम की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, पश्येष में अनार्यम अनंत आद्य पश्येष, जरा देखिए तो सही, क्या देखिए, मैं अनार्यम, मेरे साहस तो देखिए, मेरे मूर्तता तो देखिए, आप कौन हैं, आप अनंत हैं, आप आद्य हैं, आप परमात्मा हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, और मैं कौन हूं, मैं एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा चिंगारी हूं, अर्च ही, और आप क्या हैं, आप बड़े अग्नि हैं। अगर कोई छोटी सी चिंगारी आग को जलाने का प्रयास करे तो क्या होगा, चिंगारी समझते हैं ना, काय म्हणतात मराठी मध्ये, ठिणगी, एक ठिणगी है मतलब चिंगारी। तो अगर ये चिंगारी आग को जलाने का प्रयास करे तो चिंगारी ही खत्म हो जाएगी, आग को कुछ नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं चिंगारी और आप विशाल अग्नि, और मैं इतना मूर्ख था कि मैं आपको जलाने का प्रयास कर रहा था लेकिन मैं ही खुद जल गया, भस्म हो गया। और इसलिए कहते हैं अतः क्षमस्व अच्युत, इसलिए हे अच्युत हे कृष्ण कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं कौन हूँ, को अहम, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ इस तमह इस अंध जगत में, और मेरा शरीर क्या है, केवल मेरे हाथों का जो है बित्तों के नाप से सात बित्ते हैं, बस केवल उतना ही हूँ। हमारा शरीर कितना होता है अगर नापेंगे आप तो 10 कितने होंगे, कितना शरीर हमारा है। ब्रह्मा जी का शरीर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उनकी उंगलियों के हिसाब से वो कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि मैं इतना छोटा प्राणी हूँ और वो भी एक मटके जैसे ब्रह्मांड के भीतर अटका पड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। और आप कौन हैं? आप वो हैं जिनके विस्तारित रूप महाविष्णु के हर एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, आप वो हैं। और मैं ये हूँ सात वित्तों से नाप तोल करने वाला आदमी, मटके जैसे ब्रह्मांड में अटके हुए आदमी, फिर भी मैं इतना मूर्ख था कि मैंने सोचा कि आपको मैं वश में कर सकता हूँ, आपको माया में डाल सकता हूँ। हे कृष्ण हे अधोक्षज, जब किसी स्त्री के गर्भ में एक बच्चा होता है और बच्चा पेट के अंदर ही माँ को लात मारता है, तो माँ क्या समझती है कि ये मेरे प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया बच्चे का, बच्चे को दंड दू। माँ उसे प्रेम का लक्षण के तौर से स्वीकार करती है। उसी तरह से क्या मेरा जन्म कमल पुष्प से नहीं हुआ था, और क्या ये कमल पुष्प आपके नारायण स्वरूप के नाभि से नहीं हुआ था। इसका तात्पर्य भगवान ब्रह्मा जी ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं आपका पुत्र नहीं, क्या आप मेरे माता पिता के समान नहीं। अर्थात ब्रह्मा जी हिंट दे रहे हैं, क्या हिंट दे रहे हैं कि जैसे बच्चा माँ के पेट में माँ को लात मारता है, माता कुछ गंभीरता से नहीं लेती है, उसी तरह से मैं भी आपके सामने छोटा सा बच्चा हूँ, मैंने भी थोड़े उधर उधर गलती की है, तो उसमें क्या है, स्वीकार कर दीजिए, छोटे बालक के रूप में रहने दीजिए, इसको गंभीरता से मत लीजिए। ब्रह्मा जी बड़े घबराए हुए हैं अभी, क्योंकि अभी उनको ज्ञान ज्ञात हो गया कि मैं कितने बड़ी अग्नि से खेल रहा था, अच्छा हुआ थोड़े से उंगली जलकर मैं बच गया, नहीं तो पूरा भस्म होना था मुझे आज। तो ब्रह्मा जी सही समय में अपने आप को संभल पाए, ज्ञान आ गया उनको, समझ गए, और फिर और ऐसे सुंदर प्रार्थना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। हम सारे श्लोकों में नहीं जा रहे हैं, केवल थोड़े थोड़े से श्लोकों में श्लोक ले रहे हैं, और आगे चल के भगवान को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि उनकी कृपा की कितनी आवश्यकता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी बता रहे हैं अथापि अथ अपि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेश अनुग्रहीत एव ही। प्रसाद मतलब ये नहीं, वो भी है प्रसाद, खाने वाले भी प्रसाद है, लेकिन प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रसाद लेश, लेश मात्र थोड़ा सा भी अगर आपके चरण कमलों का पदाम्बुज द्वय, अम्बुज मतलब कमल, तो आपके दो कमल चरण कमलों की कृपा लेश मात्र भी अगर प्राप्त हो गई तो क्या हो सकता है, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो, तो ही हम आपके महिमा को जान सकते हैं, नहीं अन्यथा नहीं जान सकते। न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्, अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक भी अपने मन से आपको नाप तोल करने का प्रयत्न करे, अपने बुद्धि से आपको जीतने का प्रयास करे, नहीं हो पाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को अगर आपके चरण कमलों का एक लेश मात्र भी कृपा प्राप्त हो जाए तो वो आपको जान पाएगा। कहने को तो बहुत है श्लोक के ऊपर, लेकिन संक्षेप में एक ही आपको छोटी सी लीला बताएंगे संक्षेप में। वो भी जब सार्वभौम भट्टाचार्य का की मुलाकात पहली बार चैतन्य महाप्रभु से हुई, जब उन्होंने संन्यास लिया था, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े आकर्षित हुए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से। सोचने लगे कि इतना सुंदर ये नवयुवक है, संन्यास आश्रम ग्रहण किया है, मुझे तो नहीं लगता कि ये संन्यास का व्रत धारण कर पाएगा लंबे समय तक, क्योंकि इतना सुंदर है तो इसे मुझे वेदांत सिखाना होगा, वेदांत सिखाकर उसका मन स्थिर करना होगा निराकार ब्रह्म में, ताकि ओम शांति शांति करके बैठेगा और फिर संसार के भोग से मुक्त हो जाएगा। तो जब गोपीनाथ आचार्य से उन्होंने कहा ये बात, गोपीनाथ आचार्य कहने लगे कि आप नहीं जानते, ये तो भगवान है। तो उस समय सार्वभौम कहने लगे, ये बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, शुद्ध भक्त, ये सब मैं मान सकता हूं, लेकिन भगवान है तुम कैसे कह सकते हो? तो उन्होंने ये श्लोक बताया, गोपीनाथ आचार्य ने ये श्लोक ब्रह्मा जी का कोट किया कि तुम नहीं जान पाओगे सार्वभौम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं है। जिनके ऊपर कृष्ण की कृपा है वही भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, अच्छी बात है, अच्छा श्लोक बताया आपने भागवत का, लेकिन ये क्या सबूत है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है? मान लेता हूं कि भगवान की कृपा चाहिए, उससे ही भगवान को हम जान सकते हैं, लेकिन ये क्या सबूत है कि आपको मिला है? उन्होंने उल्टा फिरा दिया तर्क को और कहा कि क्योंकि भगवान को मैंने पहचान लिया है, इसका मतलब ये सबूत है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। तो खैर, कहने की बात यह है कि भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं जान सकते। भगवान को जानना है तो भगवान की कृपा चाहिए, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किन की कृपा चाहिए? बैंक मैनेजर की नहीं, गुरु महाराज और वैष्णवों की कृपा चाहिए। बैंक मैनेजर भला हमारे ऊपर कृपा करे न करे, लेकिन गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन हमारे खंभे हैं हमारे जीवन में। तो गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा, पूर्व आचार्यों की कृपा, इस सब की आवश्यकता है। और आगे जाल के ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा इसी जीवन में ये सौभाग्य हो, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, जहां मैं अब जन्म लूंगा, कि मेरी गणना भी आपके भक्तों में से होगी, कि आगे चलकर लोग भी कहेंगे कि हाँ, ये भी एक भक्त हुए थे। ऐसे भी मेरी गणना हुई तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। अगर मैं पशु योनि में भी आया तो मेरी ये प्रार्थना है कि आपकी सेवा में कभी छोड़ू नहीं। और इसके बाद में ब्रह्मा जी गुणगान करने लगे ब्रजवासियों का। ये बड़े सुंदर, एक से एक सुंदर श्लोक है, बढ़िया से बढ़िया श्लोक। अहो ति धन्य व्रज गो रमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सरतात्मताज्मना यत्रेष्टयेद्यापि न चालमध्वराः। अहो अति धन्याः, ये कौन धन्य है? व्रज गो रमण्यः, व्रज के जो गौवे हैं और व्रज के गोपियां हैं, क्यों वो धन्य है? स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा, क्योंकि उनके स्तन का अमृत रूपी दूध का पान आपने किया, और कैसे किया? मुदा, अतीवते मुदा, बड़े प्रसन्नता से, प्रसन्न चित्त से आपने उनका स्तन पान किया, गौओं का और गोपियों का भी, और इस तरह से आप पूरी तरह से संतुष्ट हुए, और इतने संतुष्ट हुए कि आज तक जितने भी वैदिक यज्ञ संपन्न हुए हैं उनसे भी आपको इतनी संतुष्टि नहीं मिली। ये बड़ी सुंदर बात है या नहीं? ब्रजवासियों का कितना गौरव हो रहा है इस श्लोक में। तो ब्रजवासी होना, कृष्ण भक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। वही भगवान श्री कृष्ण ने आकर गोपियों का स्तनपान किया और गौओं का स्तनपान किया। देखिए उनका सौभाग्य। और गौओं का और गोपियों का गुणगान करने के बाद ब्रह्मा जी सारे ब्रजवासियों का गुणगान कर रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। वो कहने लगे अहो भाग्यम किनका, व्रज ओकसाम, ओकसाम मतलब निवासी, क्यों उनका इतना अहोभाग्य है नंद गोप का और सारे ब्रजवासियों का, क्योंकि यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। वो व्यक्ति जो कि पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, वो आके एक साधारण बालक की तरह है उनके संग में मित्र के रूप में खेल रहे हैं। यन मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म वो एक साधारण ग्वाल बाल के रूप में लीला कर रहे हैं। तो देखिए ये सोचने की बात है, जिनको भगवत तत्व जानना है जब तक वो इस भाव को नहीं स्वीकारेंगे कभी भी भगवान को नहीं जान पाएंगे। और आगे चल के बता रहे हैं कि हालांकि ये ब्रजवासी गण इतने भाग्यशाली हैं, लेकिन हम सारे देवी देवता भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। क्यों? अब इसके लिए एक तत्व जानना आवश्यक है कि हमारे जो इंद्रियां हैं ना, हमारी आंखें, हमारे कान, नसिक इत्यादि, इनको नियंत्रण करने वाले देवी देवता होते हैं। अलग अलग देवी देवता जो हैं, वो अलग अलग हमारे शरीर के अंगों के नियंत्रण करता है। और अगर वो देवी या देवता हमसे नाराज हो गए तो हमारे शरीर का उस अंग जो है वो काम नहीं करेगा। वो कहेंगे ठीक है हम कनेक्शन काट देंगे, तो सुनने में तकलीफ हो जाएगी, कान में तकलीफ, कोई अंधा हो सकता है, उसको दिखने में नहीं आएगा। श्री राधा गोकुलानंद की जैसे सूर्य देव हमारे नेत्रों के अधिष्ठाता देव हैं। अच्छे नेत्र चाहिए तो सूर्य देव की कृपा चाहिए। तो हर एक अंग के लिए ऐसा है। तो ये कर्मों के हिसाब से हमें हमारे इंद्रियों का बल देते हैं, लेकिन सारे देवी देवता सारे प्राणियों के इंद्रियों के माध्यम से वो भी तृप्ति अपने इंद्रिय तृप्तों को कर सकते हैं। जो अनुभव हमें अपने आंखों से हो रहा है वो सूर्यदेव उसको भी देख सकते हैं। सूर्यदेव के देखे बिना हम कुछ नहीं देख सकते, सही है ना? तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं सूर्यदेव भी देख रहे हैं। तो जो भी हम सुन रहे हैं, जो देवता कर्णों के अधिष्ठाता देव हैं, वो भी सुन रहे हैं। अगर हम कुछ भोग कर रहे हैं स्पर्श इंद्रियों से, तो जो देवता स्पर्श इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं, वो भी उसका भोग कर रहे हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम जो 11 देव हैं, जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं जो ब्रजवासी कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि ब्रजवासियों की इंद्रियां जो हैं, वो पात्र हैं। जिन पात्रों से उस अमृत का पान हम कर रहे हैं, तो ब्रजवासी वो आपका दर्शन करते हैं नित्य, और इसलिए हम अधिष्ठाता जीव जो हैं, वही आनंद को, वही दृश्य को देखते हैं उनके आंखों के माध्यम से। यही ब्रजवासी गण आपके सुंदर बांसुरी के मधुर वाणी को सुनते हैं, तो हम भी उन सारे प्राणियों के कानों के माध्यम से हम उसको सुनते हैं। इस तरह से हमें भी वही अमृत का पान करने को मिल रहा है। और उस तरह से सर्वाद्यो अंग्री उदज मधु अमृता सवमते, तो आपके चरण कमलों की जो मधु है, अमृत रूपी मधु, इसका भी पान हम कर पा रहे हैं। और आगे चल के ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये होगा कि जहां कहीं भी इस गोकुल के वन में मेरा जन्म हो और मेरे सर के ऊपर इस गोकुल के निवासियों के चरण कमलों की धूली पड़े। जिस तरह से उद्धव ने प्रार्थना की थी वृंदावन में जाकर, ब्रह्मा जी भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं और वो ये कहते हैं कि गोकुल के अंदर या बाहर, अर्थात ब्रह्मा जी इतने नम्र हो गए हैं, सोच रहे हैं कि ठीक है कि अगर मेरे अधिकार ये नहीं है कि मैं गोकुल के भीतर जन्म लूं, भले वो घास का तिनके के रूप में क्यों न हो, तो थोड़ा गोकुल के बाहर कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि गोकुल के बाहर भी लोग ब्रजवासी आते हैं जाते हैं, तो उनके चरण कमलों का स्पर्श तो हमारे सिर से होगा। अगर मैं नीचे पत्थर के पास में भी एक घास के तिनके का रूप ले लूं, तो वहां ब्रजवासी आते जाते हैं, गौए आते जाते हैं, गौओं का भी सर का चरणों का स्पर्श हुआ, तो मेरे लिए कितना अहोभाग्य है। तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रज के एक पत्थर के रूप में भी जन्म लेने के लिए तैयार है। दो तरह के पत्थर होते हैं, एक जीवित और एक मृत, ये मालूम है आपको। जीवित पत्थर भी होते हैं, सजीव पत्थर होते हैं, और मृत पत्थर भी होते हैं। ऐसे लोग हैं जो पहचान सकते हैं कि जीवित पत्थर क्या है और मृत पत्थर क्या है। जो जीवित पत्थर होते हैं उनकी भी चेतना बहुत ढकी हुई होती है, इसलिए वो प्राणी की तरह, दूसरे प्राणियों की तरह कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जैसे पेड़ हैं, उनके वो प्राण है, वो भी उनके भी भावनाएं होती हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। तो उसी तरह से पत्थर भी होते हैं जिनके प्राण होते हैं, सारे पत्थर नहीं, थोड़े पत्थर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ऐसा पत्थर भी बन सकता हूं गोकुल में, तो मेरा बड़ा भाग्य होगा। जैसे अहल्या को शाप मिला था ना पत्थर बनने के लिए, गौतम ऋषि की पत्नी, तो प्रभु रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से वो मुक्त हो गई। और इस तरह से ब्रह्मा जी और गुणगान कर रहे हैं कि आपकी कृपा के बारे में सोचते हुए मेरा मन चकरा रहा है कि आप कितने कृपालु हैं। और आगे चल के ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर श्लोक और बता रहे हैं जो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तावत् रागादयस्ते न तावत् कारगृहं गृहं तावन् मोहोंग्रि निगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः तावत् राग आदयः स्तेनाः। जब तक हमारे मन में, जब तक हम कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे, तावत् तब तक क्या होगा, ये हमारे हृदय में जो भी भौतिक इच्छाएं हैं राग आदि, वो क्या होंगे, स्तेनः, चोर होंगे। जब तक हम कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे, यावत् कृष्ण नते जनाः, तब तक हमारा गृह क्या हो जाएगा, काराघर हो जाएगा, जेल हो जाएगा। यावत् कृष्ण नते जनाः, जब तक हम कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे, तावन् मोहोंग्रि निगडो, तब तक हमारे परिवार के सदस्यों के प्रति जो प्रेम है वो हमारे पैरों में जंजीर बन जाएगी। दूसरे शब्दों में, जब तक हम कृष्ण के भक्त नहीं बनते, तब तक हमारे भौतिक आसक्तियां जो हैं वो चोर होंगी। जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बनते, हमारा घर जेल बनेगा। और जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बनते, हमारे रिश्तेदारों के प्रति जो प्रेम है वो हमारे पैरों में जंजीर बन जाएगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति चोरों के डाका का शिकार नहीं, पर डाक का शिकार नहीं बनना चाहता, जो व्यक्ति जेल में नहीं रहना चाहता और जो व्यक्ति अपने पैरों में जंजीर नहीं चाहता, उसको क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए उसे। ऐसे करने से आप मुक्त हो सकते हैं। जैसे नंद महाराज कंस के कारागार में मुक्त हो गए क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे, उनके पैरों से हाथों से जो भी जंजीर थी टूट गई, जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, नंद महाराज जी सीधे आगे चले गए। तो ये है भक्त बनने का परिणाम। और आगे ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनातानंद संदोहम प्रति तुम प्रभो। हे प्रभु, आपको ये भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आप यहां आकर भौतिक लोगों की नकल करते हैं। और ये नकल क्यों करते हैं? केवल आपके भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए करते हैं। आचार्य समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब ये भौतिक संसार में आकर लीला करते हैं तो यहां पर लीला का स्वाद अधिक होता है। क्यों? जिस तरह से एक दिया सूरज के रोशनी में उतनी तेजी से नहीं जलता या उसका सौंदर्य उतना अच्छा नहीं लगता, जिस तरह से एक रत्न का सौंदर्य बढ़ जाता है जब एक नीले रंग के कांच के ऊपर उसे रखते हैं, और उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भगवान के धाम में भी उतने सुंदर नहीं लगते जितने इस भौतिक संसार में लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो हर जगह भगवान की लीला चल रही है, यहां पर तो माया की लीला चल रही है। तो माया की लीला के बीच में अचानक कृष्ण की लीला आ जाए, जैसे कि कचरे के डब्बे में सोना, जैसे कि 10 दिन पुरानी रोटी के बीच में अचानक रसगुल्ला, अच्छा सा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, अचानक उसी तरह से भौतिक संसार में जब भगवान श्री कृष्ण आकर वही लीलाएं करते हैं जो कि वो अपने धाम में करते हैं, तो फिर इनका स्वाद बहुत मधुर होता है। तो ये ब्रह्मा जी बोले जा रहे हैं, सुंदर एक के बाद एक चिंतन करने लायक है। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या नमे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है, भारत में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। जब वो क्या कहते हैं, जानंत एव जानंतु, वो कहते हैं कृष्ण, हम सब जानते हैं कृष्ण के बारे में। आप मिले हैं ऐसे लोगों से? ये बचपन से भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? भगवद गीता का सार क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। या गीता का सार क्या है? तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा क्या है जो तुमने खोगे, ये सब बोलेंगे, है ना? तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या, उनको बोलने दो। जो बोलते कि मैं सब कुछ जानता हूं, हे भगवान, उनको कहने दो। ऐसे मैं इसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता, मेरी शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहता उन लोगों के बारे में बात करते हुए, वो लोग तो मूर्ख है ही। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मेरे बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं कि मनसो वपुचो वाचो, मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी वाणी आपके वैभव को जान नहीं सकता। बिल्कुल मैं आपके वैभव की सीमा के बाहर हूं, मैं बिल्कुल नहीं जान सकता कि आपका गौरव क्या है, आपका वैभव क्या है। दूसरे लोग भला कहते जाएं कि मैं कृष्ण को जानता हूं, हम भगवद गीता जानते हैं, लेकिन मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं जान सकता आपको। तो ब्रह्मा जी ऐसे कह रहे हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? देखिए, है ना सोचने वाली बात। इसलिए हे भगवान, तुम एव जगताम नाथ हो, आप तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ हैं, लेकिन फिर भी जगत एतत् तव अर्पितम, फिर भी ये एक ब्रह्मांड में आपको अर्पण कर रहा हूं। सारे ब्रह्मांड तो आपके हैं ही, लेकिन मैंने अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी समझा था ना, इसलिए मैं इस ब्रह्मांड को आपको अर्पण कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी क्या अर्पण कर रहे हैं भगवान को? वास्तव में ब्रह्मांड अर्पण कर रहे हैं, क्या अर्पण कर रहे हैं? हाँ, अपने स्वामित्व के भावना को त्याग रहे हैं। अब तक ब्रह्मा जी यही सोच रहे थे कि ये मेरा है, मैं सृष्टि करता हूं। इसी तरह से हमें सबको ऐसे ही सोचना चाहिए, अपने घर को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने शरीर को, अपने धन को, अपनी योग्यता को, जो भी कुछ हमारे पास है, जिसको हमने अपना सोचा है, इन सब चीजों को अर्पण करना चाहिए भगवान के चरण कमलों में। ये जानते हो कि पहले से भी ये भगवान के ही थे, लेकिन झूठे रूप से हमने इनका हरण कर लिया, सोचा कि ये मेरा है। तो जिस तरह से ब्रह्मा जी के होश ठिकाने आ गए हैं और वो भगवान को ये इस ब्रह्मांड को अर्पण कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा घर, हमारा धन, हमारा परिवार, सब कुछ हमें उनको अर्पण करना चाहिए। मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलुं तुवा पदे नंद किशोर। भक्ति गुरु ठाकुर बताते हैं ना कि हे नंद किशोर, हे कृष्ण, मानस देह गेह जो किछु मोर, या मेरा जो कुछ भी है, मन तन धन जो भी, अर्पिलुं तुवा पदे नंद किशोर, अभी आपके चरण कमलों में मैं अर्पण कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ। मतलब अब तक मैंने समझा था कि ये मेरे हैं, लेकिन अब जब मैं समझ गया कि मेरा नहीं है, ये सब आपका है, तो अर्पण कर रहा हूँ। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस सारे ब्रह्मांड को अर्पण कर दिया उन्होंने, ऑफरिंग कर डाला, इसलिए ब्रह्मांड प्रसाद बन गया, क्योंकि ब्रह्मांड को ऑफरिंग कर दिया उन्होंने। और फिर कहते हैं कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ये सूरज चमक रहा होगा, तब तक मैं आपको दंडवत करता रहूंगा, आपको प्रणाम करता रहूंगा। वैसे कोई कानूनी कागजात में भी पुराने समय के, अगर कोई लंबे समय के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ करता था, तो उसमें लिखा जाता था यावत चंद्र दिवा करो, जब तक चांद रहेगा, जब तक सूरज रहेगा, तब तक हमारा ये एग्रीमेंट रहेगा, हम आपको ये मकान दे रहे हैं किराए पर, कब तक दे रहे हैं, जब तक चांद रहेगा, जब तक सूरज रहेगा। कहने का मतलब है निरंतर ऐसा रहेगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, अर्थात जब तक मैं रहूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड के अंत में उनका भी देहांत हो जाता है, तो जब तक ब्रह्मांड रहेगा मैं आपको दंडवत करता रहूंगा। आचार्य समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी को हृदय में बहुत बुरा लग रहा है और अपने आप को ब्रह्म राक्षस सोच रहे हैं कि मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति हूं, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही थी और मैंने अपने घमंड के वजह से भगवान की लीला में दखलंदाजी की, जैसे कि खीर में मैंने कुछ मिर्ची डाल दी, या खीर के भीतर मैंने कुछ रेती बालू डाल दी। भगवान की लीला इतनी मधुर थी, लेकिन मैंने क्या कर दिया। वास्तव में ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला को और भी मीठा बनाया है ना, अगर ब्रह्मा जी नहीं आते तो ये लीला आज नहीं होती, भगवान के अद्भुत ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं होता। तो ये सब भी भगवान एक कठपुतली की तरह सबको नचा रहे थे, इसलिए लीला उन्होंने रची। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण का इस बड़ा सुंदर रूप देखकर ब्रह्मा जी ने कह दिया कि अभी कृपा करके मुझे जाने की आज्ञा दें, अनुमति दें, मैं अपने धाम में जाना चाहता हूं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं, बड़ा गंभीर स्वरूप था भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि 6 साल के बालक ये प्रतीत होने नहीं दे रहे हैं कि उनको मालूम है कि कौन है ये। हर समय वही सेव सोच रहे थे कि ये कौन है बड़ा व्यक्ति, 4 सर वाला व्यक्ति आकर प्रार्थना कर रहा है, मैं तो ग्वाल बाल हूं, मैं तो गऊ को ढूंढ रहा हूं, मेरे मित्रों को ढूंढ रहा हूं, यह मजा किरकिरा करने के लिए कौन बड़े स्वर्ण रंग के व्यक्ति आ गए, मुझे क्या मालूम ब्रह्मा कौन और ब्रह्मांड क्या, मुझे तो मेरे गऊ से मतलब और मेरे दही चावल से मतलब और मेरे मित्रों से मतलब है। तो आचार्य बताते हैं कि जब भगवान ने ऐसे गंभीर रूप से बर्ताव किया ब्रह्मा जी से, या कुछ बोले नहीं, जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि भगवान चाहते थे कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले जाएं। ब्रह्मा जी ने हिंट दे दिया था कि मुझे वृंदावन में रहना है ना, कह तो दिया था कि घास का तिनका भी बनने के लिए तैयार हूं, मैं पत्थर भी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान चाहते थे कि वो जाकर अपनी सेवा करें। उसी तरह से हमें भी अपनी अपनी सेवा करनी चाहिए, है ना, अपने अपने लिए जो निहित है, जैसे जन्माष्टमी के लिए सेवा अपने अपने करनी चाहिए, है ना। अगर दूसरी जगह जाके बैठेंगे, सोचेंगे यहाँ ये सेवा अच्छा लग रहा है, जैसे प्रसाद डिपार्टमेंट में वगैरह, तो हमें वहां जाना चाहिए जहां हमारी सेवा है। तो ये महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई भक्त भी चाहते हैं कि हम जाके वृंदावन में रहेंगे, हम यहां रहेंगे वहां रहेंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं धाम में रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी सेवा करना। जो हमें बताया गया है, जो आदेश हमें मिला है, उसका पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल धाम में जाकर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आदेश का पालन करने से, आज्ञाकारी भक्त होने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो उस समय जब ब्रह्मा जी वापस चले गए, तो कृष्ण भगवान ने अपनी लीला फिर से चालू की। लेकिन ये सारे स्थल जो हैं आज भी वृंदावन में हैं। आप में सब वृंदावन यात्रा में जो आए थे, आपको याद होगा भोज थाली में हम गए थे, जहां भगवान श्री कृष्ण ग्वालवाल मित्रों के साथ में प्रसाद ले रहे थे, और वहां एक पत्थर भी है, और उस पत्थर वो ऊपर से थोड़ा चपटा हुआ है, और ऊपर वहां थाली बनाकर भगवान खाते थे उसमें, जब कभी भी वो जाते थे उस इलाके में भगवान ने भोजन लिया था। और एक जगह है जिसको परखम कहते हैं, परखना मतलब परीक्षा लेना, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने की इच्छा रखी और उन्होंने ग्वालों को चुरा दिया, और बालहर नाम का जगह है जहां उन्होंने बालों को हरण किया, गऊओं को चुरा लिया वहां परखम में, और जहां ग्वाल बालों को चुरा लिया वो बालहर नाम है जगह का, आज भी है वृंदावन में। और सेई नाम का जगह है जहां ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से लौटकर आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण का के माया का प्रदर्शन देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे सेई में। और आखिर में चौमुहा नाम का जगह है, चौमुहा, चौमोहन, चौमुख, अर्थात वो स्थान जहां ब्रह्मा जी ने प्रार्थना अर्पण किए। चौमुहा क्यों? क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख या अपने चारों किरीट मुकुट पृथ्वी से स्पर्श किए, भगवान के चरण कमलों से स्पर्श किए। तो जिस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा जी के मुकुट स्पर्श किए उसको चौमुहा कहते हैं। तो वो भी है, ये सब आसपास में है, वृंदावन के दिल्ली आगरा रास्ते में पड़ते हैं। तो ये स्थान में जब अगली बार जाएंगे वृंदावन, अगर हो सके तो वहां जाएंगे, देखेंगे इन स्थानों को और ये लीला का स्मरण करेंगे। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी चले गए वापस, श्री श्री राधा गोकुलानंद की, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो ग्वालों को, वो वत्सों को लेकर आए और फिर से ग्वाल बालों के पास में आए। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि एक साल पहले जहां ग्वाल बाल और कृष्ण बैठे हुए थे पिकनिक मनाने के लिए, ग्वाल बाल ठीक उसी जगह थे, और जहां वत्स चरने के लिए गए थे वन में एक साल पहले, वो वत्स भी ठीक उसी जगह थे, और ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ने उन वत्सों को वो ले आए और फिर से अपने मित्रों के साथ में आए बैठने। और उस समय सारे ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कृष्ण इतनी जल्दी आ गए, एक क्षण भी नहीं हुआ, हमने तो आरंभ नहीं किया भोजन, हम तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, आओ आओ बैठो, हम साथ में लेते हैं प्रसाद। इसका मतलब है कि जहां पूरा एक साल गुजर गया था इन ग्वाल बालों के लिए और उन वत्सों के लिए, केवल एक क्षण बीता था। भगवान की योग माया की वजह से उनको पता ही नहीं चला कि एक साल बीत गया है, उनको लगा कि एक क्षण ही बीता है। और उस एक क्षण में, अर्थात उस एक साल में, उनको न तो भूख लगी, न प्यास लगा, न कोई कष्ट हुआ, न नींद आई। वैसे के वैसे उस स्थान में थे वो, और भगवान की योग माया शक्ति से ही सारे ब्रजवासी उन ग्वाल बालों को देख नहीं पाए, हालांकि वो उसी जगह थे, शायद वहां से गुजर भी गए होंगे कई बार गोपगण, लेकिन भगवान की योग माया के प्रभाव से उनको देख नहीं पाए, नहीं वो वत्सों को देख पाए। देखिए भगवान की अद्भुत शक्ति। आपको याद होगा कि पहले जब इस लीला की चर्चा हो रही थी तो हम ये बता रहे थे कि ग्वाल बाल और वत्सों के कितने ग्रुप हो गए, कितने सेट हो गए, तीन। तीन कैसे हुए? पहले जो ओरिजिनल, जो पहले से जो ग्वाल बाल, असली ग्वाल बाल थे और असली वत्स थे, वो पहले जो फिर से अभी यहां आ गए हैं, और दूसरे जिन्होंने ब्रह्मा, जिनको ब्रह्मा चुरा ले गए थे, वो कौन थे? माया अर्भक माया के थे, ब्रह्मा के भगवान ने माया से इनको उत्पन्न किया था, तो भगवान के माया शक्ति से उत्पन्न हुए थे झूठे ग्वाल बाल और झूठे वत्स, उनको ब्रह्मा जी ने छुपा लिया था गुफे में। और तीसरे कौन? स्वयं कृष्ण। कृष्ण ही अपने आप को विस्तारित किया था ग्वाल बालों के रूप में, वत्सों के रूप में। तो जब माया ग्वाल बाल और माया वत्स गुफे में छुपे हुए थे ब्रह्मा जी की कृपा से, उधर कृष्ण भगवान अपने आप के विस्तारित रूपों से एक साल भर वैसे ही लीला करते रहे जैसे कि वो पहले किया करते थे। तो तीन जगह में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। गुफे में ग्वाल बाल और वत्स क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और कृष्ण के विस्तारित रूप ग्वाल बाल और कृष्ण के विस्तारित रूप वत्स वो क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं जैसे कि पहले किया करते थे। और कितने समय तक लीला चल रहा था? एक साल तक। और ये असली ग्वाल बाल वो नदी के तट पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं? उधर ही बैठे हैं, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक क्षण भी बीतना नहीं। कृष्ण बस गए और आए, तो वो सोच रहे हैं कि हम लोग बैठेंगे कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे। और वत्सों को भी ऐसे ही हुआ, उनको ऐसे लगा कि हम अभी अभी घास खाने गए थे, अभी आ रहे हैं। ये है भगवान की माया शक्ति। और ये बताया जाता है कि हालांकि उनके लिए एक क्षण ही बीत गया था असली ग्वाल बाल असली वत्सों के लिए, लेकिन फिर भी उनका शरीर अच्छी तरह से बढ़ गया था। जैसे एक साल में बढ़ता है ना बच्चों का, जो पांच साल का बच्चा होता है, छह साल का हो जाता तो उस एक साल में काफी कुछ वृद्धि होती है ना शरीर की, तो शरीर की वृद्धि हो गई, वत्स भी थोड़े बड़े हो गए, एक साल और बड़े हो गए। लेकिन उनको लग रहा था कि एक क्षण ही बीत गया है। देखिए अद्भुत अद्भुत बातें हैं, है ना? ये किसी उपन्यास में भी नहीं पढ़ते आप, कोई अखबार में उपन्यास में ऐसे कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के सामने एक मासूम ग्वाल बाल की तरह पेश आ रहे थे, बिल्कुल पेश नहीं देने दे, ये नहीं ज्ञात होने दे रहे थे कि मैंने इतना कुछ बड़ा काम किया है। और आगे चल के सारे जो ग्वाल बाल और कृष्ण वृंदावन में लौट कर आए, और जब लौट कर आए तो तुरंत घोषणा करना आरंभ किया। लेकिन उसके पहले कृष्ण भगवान ने उनको अघासुर का चर्म दिखाया, मृत शरीर, जो कि एक साल पहले कृष्ण ने मारा था। लेकिन ग्वाल बालों को लगा था कि आज ही मारा, आज सुबह मार दिया कृष्ण भगवान ने, तो उन्हें भी लगा कि भगवान ने अघासुर का वध आज ही किया, सुबह अभी अभी किया। और फिर हम थक गए थे, हम ये आए प्रसाद लिए और चले आए वापस। तो सारे एक साल में जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई इन ग्वाल बालों को बिल्कुल पता नहीं चला। और जैसे ही वृंदावन प्रवेश किए तो सभी लोग घोषणा करने लगे जोर जोर से कि आज कृष्ण ने एक भयंकर सांप की हत्या की और हमें बचा लिया। सुनो सुनो सभी लोग, जैसे कि डेली रिपोर्ट जाता था ना, ग्वाल बाल सब हर रोज जाके कहानी सुनाए करते थे कि आज ने कृष्ण ने ऐसे किया, कृष्ण ने उस असुर का वध किया। तो फिर उन्होंने बताया कि अघासुर का वध आज सुबह किया कृष्ण ने, लेकिन सत्य क्या है कि अघासुर का वध एक साल पहले हुआ था। और यही प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कि ऐसा क्यों हुआ कि जो घटना एक साल पहले घटी थी, परीक्षित ग्वाल बालों ने आकर वृंदावन में ऐसे कहा कि ये आज हुई है। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न के उत्तर में ये ब्रह्म विमोहन लीला सुनाई थी परीक्षित महाराज को। तो इस तरह से कृष्ण भगवान मोर पंख से और नाना प्रकार के वन के धातुओं से और फलों से इत्यादि फूलों से सज्जित लौटकर आ रहे हैं अपनी सुंदर तरह से बांसुरी बजाते हुए। अपने बांसुरी बजाते बजाते गौओं को बुला रहे थे, और ऐसे सारे ग्वाल और वत्स दोनों साथ में मिलकर कृष्ण के पीछे पीछे वृंदावन में प्रवेश किए। और इस तरह से भगवान ने ऐसे सुंदर लीला की, ब्रह्म को विमोहित किया और हम सबको बड़ा आनंद दिया। और परीक्षित महाराज पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रज की गोपियां कृष्ण को इतना प्रेम करती थी कि अपने पुत्रों से ज्यादा। तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि ये जो शरीर है ना, ये सबको प्रिय है, अपना शरीर। अपने दूसरों से किसी से भी ज्यादा अपना शरीर सबको प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उस शरीर के अंदर उसकी आत्मा है। जहां आत्मा है स्व, उस जगह को, उस स्थान को, उस देह को व्यक्ति बहुत प्रेम करता है। तो उसी तरह से श्री कृष्ण हमारे आत्मा के आत्मा है, हम उनके अंश हैं। इसलिए हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। इसलिए जब कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है तो हम कृष्ण को अपने आप से भी ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। कृष्ण भक्ति का ये लक्षण है। इसलिए ब्रजवासी इतना कृष्ण से प्रेम करते थे। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं परीक्षित महाराज को और फिर अंत में आशीर्वाद देते हैं कि जो व्यक्ति इस लीला का श्रवण कीर्तन करता है तो अवश्य उसकी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आपकी भी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण करनी है तो आपको भी अच्छी तरह से ब्रह्म विमोहन लीला और अन्य कृष्ण लीलाएं भी पढ़नी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, ब्रह्म विमोहन लीला की, श्री श्री राधा गोकुलानंद की। आपकी कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हाँ जी,
एक साल के बाद जब वापस आए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि आज कृष्ण ने अगासुर का वध किया, तो जब ब्रजवासियों ने सुना तो उनको कुछ संदेह नहीं हुआ कि ये तो एक साल पहले की घटना थी, जबकि उनकी शरीर भी बड़े हुए थे तो वो डेली रिपोर्ट भी देते थे। ये तो था नहीं कि वो अगासुर का वध का कुछ जन्मदिन मना रहे हो, यानी सब मरण दिवस मना रहे हो, तो ऐसा भी नहीं था। एक साल तो बीत चुका था, तो ब्रजवासियों को कुछ संदेह नहीं हुआ था उसमें?
भगवान की योग माया से ब्रजवासियों ने इन सारे दृश्यों को नहीं देखा। असली ग्वालबाल जहां बैठे थे वो नहीं देख पाए, असली वत्स जहां चर रहे थे वो नहीं देख पाए, और अघासुर का शरीर जो पड़ा हुआ था उसको नहीं देख पाए। एक पूरे साल के लिए भगवान की योग माया शक्ति के बल से। और जब ग्वालबाल लौट कर आए, उनके शरीर एक साल बड़े हो गए थे, लेकिन कृष्ण तो उनके पास, उनके बच्चे तो रोज उनके पास आते थे ना, वो भी तो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। कृष्ण के रूप, कृष्ण ने तो ग्वाल बालों का रूप लिया था ना, तो आज के दिन कृष्ण उनके पुत्र नहीं थे, अभी उनके असली पुत्र ही पुत्र बन के आए वापस। इसके पहले एक साल कृष्ण उनके पुत्र बनकर आए थे ना, तो कृष्ण भी, उनका शरीर भी वैसे ही बड़ा होते जा रहा था इस एक साल में। ठीक है, तो इसलिए उनका एक साल बड़ा होना वो माता पिता के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि एक साल से उनको बड़े होते होते माता पिता देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारा बच्चा है, लेकिन वो वास्तव में कृष्ण थे। लेकिन आज के दिन कृष्ण नहीं आए, वही उनके ही पुत्र लौट कर आ गए।
एक साल पहले जब कृष्णा उनके रूप में आए थे निकुट, हाँ, तब उन्होंने तब भी तो डिक्लेयर किया होगा ना कि असुर का वध हो गया।
तो ग्वालबाल तो आए नहीं थे ना, ग्वालबाल तो आए नहीं थे वापस, ग्वालबाल तो वन में ही रहे थे, उसी जगह रहे थे, उसी स्थान में। और माया ग्वालबाल तो गुफा में छुपे हुए थे, सो रहे थे। तो जो लड़के आए वापस वो कृष्ण थे सारे, सारे के सारे। और उन्होंने चुप, उन्होंने कुछ बताया नहीं। वही एक दिन था जिसमें कृष्ण भगवान की का डेली रिपोर्ट नहीं गया ग्वालबालों से, उन्होंने नहीं बताया कि क्या हुआ आज।
प्रभु जी, आपने कहा कि भक्तों के जीवन में जब संकट आते हैं तब एक एक बार भगवान ही चाहते हैं कि हमारे कर्म ऐसे जल्दी खत्म हो जाए जल्दी, तो फिर एक एक बार ऐसा होता है कि जब दुख आते हैं तब क्या होता है, हमारे हाथों से ही कोई वैष्णव अपराध बन जाता है, तो ऐसा तो उल्टा हो गया कि वैष्णव अपराध बढ़ गया तो पाप बढ़ गए। तो इसे हमारा कर्म समझना है, ऐसा नहीं समझना कि भगवान चाहते कि हम कर्म से मुक्त हो, हम ये समझना है कि ये हमारे कर्म के फल है।
हम जो करते हैं उसके लिए भगवान, उसमें भगवान कहीं आते नहीं बीच में। अगर हमें जीवन में कोई कष्ट आ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का फल है, भगवान की कृपा है। लेकिन हमें कष्ट हो रहा है इसलिए हमें दूसरों को दोषी ठहराएंगे, वैष्णवों को या किसी और को, तो वो ठीक नहीं है। तो भगवान की कृपा क्या है कि हमें वो कष्ट मिला है, लेकिन हम जब दूसरों की निंदा करेंगे वो भगवान की कृपा नहीं है, वो हमारा अपराध है, हम करते हैं अपराध। तो जब जीवन में संकट आएंगे तो हमें इनको ब्रह्मा जी की तरह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की कृपा है, हमारे कितने सारे जन्मों के पाप धुला रहे हैं भगवान, ऐसे हमें सोचना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की आप सबकी जय।